بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب آزادی کے متوالے ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف اقبال کاظمی ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ ہم سے مزید کتابوں کے بارے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر 0306787822 پر ہم سے رابطہ قائم کریں یا پھر ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org پر وزٹ کرے. دیباچا. دہلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان جنہوں نے دشمن کی سرزمین خصوصاً دہلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگائی. ملک دشمن عناصر نے ان کا جذبہ جہاد سرد کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی مگر آزادی کے ان متوالوں نے جذبہ ایمانی وطن پرستی قومی غیرت اور حمیت کے بل پر آگ اور دھوئیں کے سمندروں کو پار کر کے جس طرح دادِ شجاعت دی وہ ہماری قومی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. افرادی قوت اور اسلحے کی کمی کے باوجود ان سربکف مجاہدین نے دشمن کے ناپاک منصوبوں کو اپنی خداداد صلاحیت سے ہمیشہ ناکام بنایا. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارنا ان کے دل دہلا دینے والے مارکوں میں دیکھا جا سکتا ہے. مصنف اقبال کاظمی نے جس طرح موضوع سے انصاف کیا یہ انہی کا حصہ ہو سکتا تھا. یہ ان کے زرخیز قلم کا کمال ہے کہ قاری کسی ایک جگہ پر آنکھ چھپکنا بھی پسند نہیں فرمائے گا اور تحریر کی دلچسپ روانی کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جائے گا. دہلی شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تہاڑ نامی وہ چھوٹا سا قصبہ اس جیل کے دم سے آباد تھا جس کی سنگین اونچی دیواروں کے پیچھے قیدیوں کی طرح ہزاروں ایسی داستانیں بھی محفوظ تھیں جن کا ایک ایک لفظ انسانیت کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے بہت کافی تھا. وقت کے بے زبان ہیولے نے ان اونچی دیواروں کے اندر انسانیت کو سسکتے دیکھا تھا. ہزاروں بے گناہوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑتے ہوئے دیکھ کر بے زبان لوگ بھی اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور تھے. یہاں انسان نے انسان پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے, بے گناہ قیدیوں پر تشدد کیے, ایسے ایسے حربے استعمال کیے گئے کہ ان تشدد والے قیدیوں کی طرح وقت کے پر بھی پھڑ پھڑا کر رہ گئے. اونچی اونچی دیواروں والی اس جیل کی تاریخ کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ کب اور کیسے وجود میں آئی, لیکن تہاڑ نامی اس قصبے کے بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہوگا. صدیوں پہلے یہ ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی. چند کچے مکانات اور گھاس پھوس کے جھونپڑے بنے تھے جن کے چاروں طرف دور دور تک ویرانہ پھیلا تھا. پھر یوں ہوا کہ دہلی کے حکام نے خطرناک قیدیوں کے لیے ایک الگ اور مضبوط جیل کی ضرورت کو محسوس کیا, ایک ایسی جیل جہاں سے قیدی فرار بالکل نہ ہو سکے. اس کے لیے دہلی شہر سے چند میل دور ویرانے میں جھونپڑیاں اور کچے مکانات پر مشتمل تہاڑ نامی اس چھوٹی سی بستی کا انتخاب کیا گیا. پہلے یہ جیل بہت چھوٹی سی تھی, یہاں صرف چند انتہائی خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خطرناک قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. ہندوستان میں فرنگی سرکار کی پالیسیاں جنتا کو سرکار کے خلاف ابھارنے پر مجبور کرنے لگی. ہند میں فرنگیوں کا طلسم ٹوٹنے لگا. سیاسی شورشوں کے ساتھ سنگین نوعیت کے جرائم میں بھی بتدریج اضافہ ہونے لگا. بعض علاقوں پر تو عملاً قاتلوں اور ڈاکوؤں کا ہی راج تھا. انگریز سرکار ان سے نبرد آزما تھی. جرائم کے حوالے سے دہلی کی صورتحال سب سے زیادہ ابتر تھی. پکڑے جانے والے خطرناک مجرموں کو لمبی سزا بھگتنے کے لیے تہاڑ جیل بھی بھیج دیا جاتا تھا. تہاڑ جیل کو تنگی دامہ کی شکایت رہنے لگی اور اسی شکایت کے ازالے کے لیے جیل کی دیواروں پہ بھی وقتاً فوقتاً وسعت اختیار ہونے لگی. دہلی کی تہاڑ جیل نے بہت جلد عالمگیر شہرت حاصل کر لی. دہلی شہر میں لال قلعہ اور اس کے نواح میں ابراہیم لودھی اور ہمایوں کے مقابر کے بعد اگر کسی مشہور عمارت کا نام آتا ہے تو وہ تہاڑ جیل ہی ہے. لال قلعہ, لودھی کا مقبرہ اور شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے کے پس منظر میں تو مغلیہ دور کے جاہو جلال اور عظمت کی داستانیں موجود ہیں, لیکن تہاڑ جیل کی تاریخ ظلم و تشدد, بربریت, انسانیت سوز اور روح فرسا داستانوں سے رقم کی گئی ہے. وقت نے اس جیل میں بڑے بڑے سورماؤں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا. इनमें वो सियासतदान भी हैं जिन्होंने हुकूमत वक्त के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो कातिल और डाकू भी मौजूद हैं जिन्होंने इंसानी खून से होली खेली, लाशों पर कहके लगाए। वो लोग भी इस जेल में दम तोड़ते हुए देखे गए जो बेगुनाह थे और किसी नाकर्दा जुर्म में पकड़े गए थे। आलमगीर शोहरत रखने वाला इस सदी का शफाक तरीन कातिल चार्ल्स सोबराज आज भी इस जेल की दीवारों के पीछे बंद जिंदगी की घड़ियां गिनता है, जिसने अपनी शनाख्त मनवाने के लिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों बेगुनाह इंसानों को बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया। यहाँ वो ज्याले सिख और कश्मीरी भी मौजूद थे जिन्होंने भारत की गुलामी का तौक उतार फेंका और आजादी का परचम बुलंद किए, सर से कफन बांधे आतिश नमरूद में कूद पड़े। तिहाड़ जेल की आनी सलाखों और संगीन दीवारों के पीछे मौत को गले लगाने वालों में बहुत से ऐसे ज्याले भी शामिल हैं जिन्होंने भारतीय सरकार से अपना हक भी मांगा था। आजादी से जिंदा रहने का हक, तिहाड़ जेल की दीवारें आज भी कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर मकबूल भट्ट के खून के छींटों से दागदार है, जिसे आजादी मांगने के जुर्म में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर मकबूल भट्ट को फांसी दिए जाने के वक्त तिहाड़ जेल में बहुत कड़े हिफाजती इंतजामात किए गए थे। सिक्योरिटी फोर्स में इजाफा भी कर दिया गया था। जेल के हर ब्लॉक में लातादाद बावर्दी मुहाफिजों के अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स के अफराद बड़ी तादाद में कैदियों के भेस में जेल के हर हिस्से में मुस्तैद तरीके से मौजूद थे। उन कैदियों पर खास तौर से निगाह रखी जा रही थी जिनका ताल्लुक कश्मीर से था या मुसलमान थे। हुक्काम को अंदेशा था कि मकबूल भट्ट को फांसी दिए जाने पर जेल में हंगामा बरपा हो सकता है, इसलिए हिफाजती इंतजामात जरूरी हैं। मकबूल भट्ट की फांसी पर वादी कश्मीर में हिंदू राज के खिलाफ हुर्रियत पसंदों की जद्दोजहद तेज हुई। दिल्ली में भी कश्मीरी बाशिंदों ने हिंदू राज के खिलाफ मुजाहरे शुरू किए, लेकिन तिहाड़ जेल में कुछ भी ना हुआ, ना कोई मुजाहरा ना कोई हंगामा। इस जेल में अगरचे चंद ऐसे कश्मीरी मुसलमान कैदी भी मौजूद थे जिन्हें इस इल्जाम में सलाखों के पीछे बंद किया गया था कि उनका ताल्लुक कश्मीरियों के एक हुर्रियत पसंद ग्रोह से है। लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता होना ही उनका संगीन जुर्म था और वो अपने इस जुर्म की सजा में इस बदनामे जमाना तिहाड़ जेल में सजा भुगतते थे। सलीम कश्मीरी और तारिक सईद उस वक्त भी तिहाड़ जेल में मौजूद थे जब मकबूल भट्ट को यहां लाया गया था, और वो उस वक्त भी जेल में मौजूद थे जब मकबूल भट्ट को फांसी दी जा रही थी। इस दौरान उन दोनों में से किसी ने भी मकबूल भट्ट से मिलने की कोई कोशिश न की। अगर कोई कोशिश की भी जाती तो कामयाबी हासिल न होती, क्योंकि मकबूल भट्ट को जेल के एक हिस्से में रखा गया था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बड़े सख्त हिफाजती इंतजामात जारी थे और जब मकबूल भट्ट को तख्तेदार पर लटकाया गया तो उस वक्त भी उन्होंने जबान से एक लफ्ज न निकाला, क्योंकि वो जानते थे कि इस बात का कोई फायदा ही न होगा सिवाय इसके कि उनके खिलाफ मजीद इल्जामात आयद कर दिए जाएंगे और उनकी सजा में मजीद इजाफा हो जाएगा। सलीम कश्मीरी और तारिक सईद को तिहाड़ जेल में आए हुए चार साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। उन दोनों की पहली मुलाकात जम्मू में हुई थी। सलीम का ताल्लुक भारत के जेर तसल्लुत वादी कश्मीर के एक कस्बे पहलगाम से था, जबकि तारिक सईद आजाद कश्मीर के कस्बे बाघ का रहने वाला था। वो दोनों नौजवान थे और हर कश्मीरी नौजवान की तरह वो भी वादी कश्मीर को गासिब हिंदुओं के तसल्लुत से आजाद करवाना चाहते थे। वो आजाद वतन की फिजा में सांस लेना चाहते थे और ये मुश्तरका मकसद ही उन्हें एक जगह पर ले आया। लिबरेशन फ्रंट में शामिल होने के बाद ऊंचे पहाड़ों में वाके एक छोटे से तरबियती कैंप में उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गौर से देखा, लेकिन बाकायदा तारुफ हासिल न हो सका। तरबियती कैंप खत्म होने के तकरीबन दो माह बाद तारिक सईद को इत्तला मिली कि उसे लिबरेशन की तरफ से एक निहायत अहम मिशन के लिए मुंतखब कर लिया गया है। उसे मिशन के बारे में कुछ न बताया गया था, लेकिन मुकर्ररा तारीख तक जम्मू के करीब एक खुफिया मकाम पर पहुंचने का हुक्म दे दिया गया। उन दिनों कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की मुख्तलिफ तहरीकें हिंदू साम्राज्य के खिलाफ बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा कर रही थी, जिसकी वजह से आजाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर में दाखिल होना खासा मुश्किल काम भी था, लेकिन तारिक सईद किसी न किसी तरीके से जम्मू पहुंचने में कामयाब हुआ और फिर जम्मू शहर से चंद मील दूर पहाड़ों में घिरी हुई एक छोटी सी बस्ती तक पहुंचने में उसे कोई दुश्वारी पेश न आई। उसका मेजबान एक बूढ़ा चरवाहा था जिसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। तारिक सईद के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 75 के लगभग जरूर होगी, लेकिन मुसाफा करते हुए तारिक ने उसमें जवानों जैसी ताकत का एहसास किया। उसका लिबास बोसीदा और चेहरे पर हसरत थी, लेकिन आंखों से एक अज़्म झलकता था। तारिक सईद की हालत भी खस्ता हाल थी। फटा हुआ लिबास, टूटे हुए जूते और अफलास ज्यादा चेहरा देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसकी हालत उन कश्मीरी मुसलमानों से मुख्तलिफ न थी जो गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसते थे। वादी में तमाम वसाइल पर हिंदुओं का कब्जा था और दौलत और ताकत के बलबूते पर वो उन अफलास ज्यादा मुसलमानों पर ही मुसल्लत थे, लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर थे कि इन फाका ज्यादा चेहरों पर चमकती हुई आंखों के पीछे जो तूफान मचलता है वो उन्हें खसोखाशाक की तरह बहाकर ले जाएगा। वो बूढ़ा चरवाहा शिराज था। उसने गर्म जोशी से तारिक सईद को खुशामदीद कहा। ये बस्ती सिर्फ 7 घरों पर मुश्तमिल थी। सबके सब मुसलमान थे और उनकी गुजरोकात मवेशियों की परवरिश पर ही थी। तारिक सईद की आमद पर बस्ती के किसी आदमी ने हैरत का बिल्कुल इजहार न किया और न ही बूढ़े शिराज ने किसी से इस बारे में कोई बात की। तारिक सईद मीलों पैदल चला था। जब वो बस्ती में पहुंचा तो शाम होने को थी। कुछ ही देर बाद चिराग रोशन हुए। तारिक सईद खाना खाने के फौरन बाद ही गहरी नींद सो गया और जब उसकी आंख खुली तो दिन की रोशनी फैल चुकी थी। वो रात भर बेखबर सोया रहा। शुक्र है तुम जाग गए, मैं तो समझी थी कि शायद अब तुम कभी उठोगे नहीं। तारिक को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कानों के करीब कोई जलतरंग बज उठे हों। बड़ी ही सुरीली आवाज थी। उसने एक झटके से गर्दन घुमाकर देखा और फिर पलक झपकना ही भूल गया। उस लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल होगी। सेब की तरह सुर्ख रुखसार, हिरनी जैसी चमकदार बड़ी बड़ी स्याह आंखें, गुलाब की पत्तियों जैसे नाजुक और पतले पतले होंठ और अंगड़ाइयां लेता हुआ शबाब। कौन हो तुम और शिराज बाबा कहाँ पर हैं? तारिक ने पूछा। वो एक झटके से उठकर बैठ गया। लड़की के मशहूर कुन हुस्न ने उसे बहुत मुतासर किया था। मैं रोशा हूँ, शिराज बाबा की पोती। सूरज सवा नेजे पर आ गया है, उठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, लड़की ने फौरन ही जवाब दिया। मैंने पूछा था शिराज बाबा कहाँ पर है, मेरे सवाल का क्या हुआ? तारिक ने पूछा। बाबा मवेशी लेकर पहाड़ों की तरफ गए हैं, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब उठो जल्दी करो, नाश्ता तैयार है। तुम शिराज बाबा की पोती हो, मगर कल शाम जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त तो तुम नजर नहीं आई थी, अब कहाँ से टपक पड़ी? तारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। रात को तो मैं साथ वाली बस्ती में थी, मेरी सहेली की शादी थी, सारी सखी सहेलियां उसके घर जमा थी, मैं सुबह ही आई हूँ। वो बस्ती यहाँ से सिर्फ 1.5 कोस के फासले पर है। बस अब तुम उठो जल्दी करो, मुझे और भी काम करने हैं, रोशा कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तारिक जमाइयां लेता हुआ बाहर निकल आया। शिराज का ये मकान 3 छोटे छोटे कमरों पर मुश्तमिल था, 2 कमरे रिहायश के लिए और तीसरा सामान और मवेशियों के चारे के लिए मखसूस था। बस्ती के चारों तरफ ताहद्दे निगाह सब्जा फैला हुआ था। मकानात की पुश्त पर एक छोटी सी पहाड़ी थी और सामने के रुख पर चंद गज दूर शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बहती थी। तारिक ने नदी के ठंडे और शफाफ पानी से मुंह हाथ धोया और देर तक खड़ा चारों तरफ फैले हुए मरगजार को देखता रहा और फिर छोटे छोटे कदम उठाता वापस चला गया। रोशा अपने मकान के सामने चूल्हे के करीब बैठी थी। चूल्हे पर एल्यूमिनियम की केतली चढ़ी थी जो धुएं से बिल्कुल स्याह हो चुकी थी। चंद कदम के फासले पर बांस की एक चरपाई भी बिछी थी। तारिक चरपाई पर आलती पालती मारकर बैठा। चंद मिनट बाद रोशा नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता सब्ज कहवे और सूखी रोटी पर मुश्तमिल था। तारिक सूखी रोटी कहवे में भिगो भिगो कर खाने लगा। तुम शिराज बाबा की पोती हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा बाप कहाँ पर है, क्या नाम है उसका? मेरे ख्याल में इस घर में शिराज बाबा और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रहता। तारिक ने कहवे का खून भरते हुए सवालिया निगाहों से रोशा की तरफ देखा। किसी मुजाहिद की बेटी से ये सवाल पूछना बहुत ही गैर जरूरी है कि उसका बाप कहाँ है। रोशा ने जवाब दिया। ओह, तारिक ने मजीद कोई सवाल न पूछा। नाश्ता खत्म करके उसने चरागाह का रास्ता पूछा तो रोशा ने उसे रोक लिया। तुम बस्ती से बाहर नहीं निकलोगे, ये बाबा जान का हुक्म है। तारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। सिक्योरिटी वाले इन पहाड़ों में खूनी भेड़ियों की तरह घूमते फिरते रहते हैं और तुम जानते हो कि हम मुसलमान इस मकबूजा खित्ते में कैसी कसम पुरसी की जिंदगी बसर करते हैं। हम पर जो सितम ढाए जाते हैं उनसे सारी दुनिया वाकिफ है। भारतीय दरिंदे जिसको चाहे पकड़ कर ले जाएं। हर पकड़े जाने वाले मुसलमान पर सिर्फ एक ही इल्जाम लगाया जाता है कि वो किसी हुर्रियत परस्त तंजीम का जासूस है या फिर पाकिस्तान का एजेंट। वो चंद रोज पहले भी यहां से एक बेगुनाह को पकड़ कर ले गए जिसका आज तक कुछ मालूम न हो सका। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उन दरिंदों के हाथ लग जाओ जो इस खित्ते में मुसलमानों का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। बाबा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूं। तुम मेरा ख्याल रखोगी? तारिक ने मुस्कुराती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, एक मुजाहिद की बेटी हूँ और बस बस, तारिक ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। वो रोशा की बेबाकी और अज़्म की दाद दिए बगैर बिल्कुल न रह सका। बहरहाल उसने रोशा के कहने पर अमल किया और बस्ती से बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया। रोशा कुछ देर तक घर के कामकाज में लगी रही और फिर बस्ती में ही अपनी एक सहेली के घर चली गई। तारिक पान की चारपाई पर लेटा कभी रोशा के बारे में और कभी अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। उसे बताया गया था कि मिशन के बारे में तफसीलात शिराज बाबा बताएंगे, लेकिन गुज़िश्ता रात खाने के बाद वो कुछ देर तक वादी की सूरत हाल के बारे में तो बातें करते रहे, लेकिन शिराज बाबा ने कुछ और बात ही न की। तारिक को यह भी बताया गया था कि इस मिशन में सिर्फ दो आदमी शामिल होंगे, एक वो खुद और दूसरा एक और। इस दूसरे आदमी को भी बस्ती में पहुंचना था जो अभी तक नहीं पहुंचा था, और तारिक ये सोचकर रह गया था कि मुमकिन है दूसरे आदमी की आमद के बाद ही शिराज बाबा उसे कुछ मिशन के बारे में बताएं। रोशा उसे दोपहर का खाना खिलाने के बाद फिर अपनी सहेली के घर चली गई। तारिक टहलता हुआ नदी पर चला गया और देर तक वहां बैठा दूर तक दिखता रहा। फिर अचानक ही वादी फायरिंग की आवाज से गूंज उठी और वो उछल कर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने बस्ती की तरफ देखा, वहां कुछ न था। फायरिंग की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। पहाड़ों में बाजगश्त सी पैदा होती थी और ये आवाज से अंदाजा लगाना दुश्वार था कि फायरिंग कहां से आती है, लेकिन आवाज ज्यादा दूर न थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ बस्ती की तरफ चल पड़ा। रोशा मकान के सामने चूल्हे में लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी। ये फायरिंग की आवाज कैसी थी? तारिक ने उसके करीब रुककर पूछा। ये पहाड़ तो गोलियों की आवाज से ही गूंजते रहते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहवा बनाती हूँ। कुछ देर में बाबा भी मवेशी लेकर आते ही होंगे, रोशा ने जवाब दिया और एक बार फिर चूल्हे में फूंके मारने लगी। साये लंबे हुए, सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ झुकने लगा। तारिक चारपाई पर बैठकर रोशा की तरफ गौर से देखने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद रोशा ने कहवा बनाकर केतली और प्याली उसके सामने रख दी और खुद दूसरे कामों में मसरूफ हुई। तारिक ने कहवा पीकर प्याली रखी ही थी कि एक निस्वानी चीख सुनकर वो उछल पड़ा। ये दबी दबी सी चीख बस्ती की दाएं तरफ से आई थी। रोशा भी काम छोड़कर उसी तरफ को देखने लगी। बस्ती के और लोग भी घरों से तेजी से बाहर निकल आए। उनमें 3-4 बूढ़े मर्द, 6-7 बूढ़ी औरतें, बच्चे और 3 ऐसी औरतें थी जो जवानी का सफर पूरा करने के बाद बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। वो सब उसी तरफ को देख रहे थे जहां से चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। सबके चेहरों के रंग बदले हुए थे। चीखों की आवाज मुसलसल सुनाई देती थी और फिर कुछ ही देर के बाद एक उधेड़ उम्र औरत दरख्तों के झुंड से निकलकर सामने आई। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अरे, ये तो मासी जैनब है, रेशमा की माँ। रोशा उस औरत को देखकर बदहवास सी हो गई। रेशमा कौन? तारिक ने पूछा। मेरी सहेली जिसकी शादी होने वाली है, कल रात मैं उसी के घर गई हुई थी। अल्लाह खैर करे। रोशा दरख्तों की तरफ दौड़ने लगी। बस्ती के दूसरे लोग भी उसी तरफ को दौड़ रहे थे। तारिक भी तेजी से दौड़कर उसी तरफ को जाने लगा। मासी जैनब ठोकर खाकर गिर गई थी, साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी और इस दौरान बस्ती के लोगों के साथ साथ तारिक भी वहां पहुंचा। एक औरत ने झुककर मासी को उठाना चाहा मगर वो बिफर गई। वो बुरी तरह हांफ रही थी, मुंह से कफ बह रहा था और चेहरा खौफ और दहशत से इस तरह सफेद हो रहा था जैसे सारा ही खून नुचड़ गया हो। क्या हुआ मासी जैनब? रोशा उस पर झुक गई। खैर तो है ना, ये तुम्हारी हालत? वो भेड़िए, मासी जैनब हांफते हुए बोली, मेरे रेशमा को उठाकर ले गए। उन्होंने बस्ती को भी जला दिया, सबको जिंदा जला दिया, भून दिया, सबको गोलियों से भून कर चले गए। कौन से लोग, कौन थे वो? रोशा ने पूछा। उसका लहजा भी एक अनजाने खौफ से थर्रा रहा था। फौजी, हिंदू भेड़िए। मासी जैनब को अपनी आवाज पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो कह रहे थे, उन्होंने एक पाकिस्तानी की यहाँ पर आमद देखी है, उन्हें एक पाकिस्तानी जासूस की तलाश है जिसे हमने यहाँ पर छुपा रखा है। वो घरों में घुसकर तलाशी के बहाने लूट मार भी करने लगे। रेशमा के बाप ने मुजाहमत की तो उसे गोली मार दी गई, बल्कि सबको गोलियां मारी गईं और सबको गोलियों से भून दिया गया। आग भी लगा दी बस्ती को, मेरे सामने सबको जलाकर रख दिया और रेशमा और जुबैदा को उठाकर ले गए। वो भारतीय दरिंदे चले गए। मासी जैनब फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने बताया कि वो उस वक्त बस्ती से बाहर गई हुई थी, इसलिए वो बच गई। अगर वो भी उस वक्त बस्ती में मौजूद होती तो वो लोग उसे भी गोलियों से मार डालते। जब वो बस्ती में पहुंची तो बस्ती जलकर राख हो चुकी थी। हर तरफ जली हुई लाशें और गोलियों से छलनी लाशें बिखरी पड़ी थी। रोशा और बस्ती वाले मासी जैनब को रोशा के मकान में ले आए। इस वाके ने हर चेहरे को धुंधला कर रख दिया। जिंदगी तो पहले ही खौफ के साए में बसर हो रही थी, अब ये साए कुछ और ज्यादा गहरे हो गए थे। मासी जैनब को चारपाई पर लिटाया गया। बस्ती के लोग उसके चारों तरफ बैठ गए। तारिक एक तरफ खड़ा कुछ सोच रहा था कि क्या मासी जैनब की बस्ती पर यह कहर उसकी वजह से टूटा था। वो एक खुफिया मिशन पर यहाँ आया था। मुमकिन है भारतीय इंटेलिजेंस को भी इसके बारे में कुछ इत्तला मिली हो और भारतीय फौजी उसी की तलाश में मासी जैनब की बस्ती में पहुंचे हो, लेकिन वो पाकिस्तानी जासूस तो ना था। उसका ताल्लुक तो कश्मीरी तंजीम लिबरेशन फ्रंट से था, लेकिन भारतीयों को इससे क्या फर्क पड़ता है। उनको तो हर कश्मीरी मुसलमान के चेहरे पर पाकिस्तानी जासूस का ही अक्स नजर आता है। शाम धुंधला रही थी। ये लोग भी मासी जैनब के गम से संभले भी ना थे कि एक और रूह फरसा खबर मिली। बस्ती का एक नौजवान लड़का जो मवेशी चराने के लिए चला गया था, दौड़ता हांपता कांपता बस्ती में दाखिल हुआ। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से पीला हो रहा था। उसने बताया कि एक फौजी जीप इसी तरफ को आ रही है। वो अपने मवेशियों को हांकता हुआ इसी तरफ आ रहा था कि बकरी का एक बच्चा टीले पर चढ़ गया। वो भी बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए टीले पर चढ़ा। उसने बस्ती की तरफ आने वाले रास्ते पर एक फौजी जीप को देखा तो मवेशियों को छोड़कर दौड़ता हुआ यहां पहुंचा। उसके कहने के मुताबिक जीप ज्यादा दूर ना थी। तारिक ने उसकी बताई हुई सिमत में देखा, एक बड़े टीले के दूसरी तरफ धूल का बादल उड़ता महसूस होता था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि जीप ज्यादा दूर नहीं और टीले के ऊपर से घूमकर किसी भी लम्हे सामने आ सकती है। रोशा भी धूल के उठते हुए इस बादल को गौर से देख रही थी। फिर एकदम जैसे ही वो होश में आई और तारिक का बाजू पकड़कर उसे खींचती हुई एक तरफ ले गई। वो लोग यकीनन तुम्हारी तलाश में यहीं आ रहे हैं, तुम छुप जाओ, रोशा ने कहा और बदहवास निगाहों से चारों तरफ देखने लगी, जैसे उसे छुपाने के लिए कोई जगह तलाश करती फिरती हो। क्या तुम मुझे बुजदिल समझती हो? ये बुजदिली की बात बिल्कुल नहीं, रोशा ने उसकी बात काटी। तुम इस इलाके में अजनबी हो, तुम पर बड़ी आसानी से जासूस होने का इल्जाम लगाया जा सकता है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें पना देने के इल्जाम में पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया जाएगा। बात तारिक की समझ में आ चुकी थी। भारतीय दरिंदों से अगरचे किसी रहम की कोई तवक्को तो थी नहीं, लेकिन रोशा की बात में बहुत ज्यादा वजन भी था। वो भी किसी पनागाह की तलाश में चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। मेरे साथ आओ, उसी वक्त रोशा ने उसे आवाज दी, यही बेहतर जगह है जहां तुम छुप सकते हो। रोशा उसका हाथ पकड़कर उस कपड़े की तरफ दौड़ी जिसमें फालतू चीजें और मवेशियों का चारा वगैरह भरा पड़ा था। भूसे के इस ढेर में घुस जाओ, जीप बस्ती के सामने पहुंच चुकी है। रोशा ने उस कमरे में भूसे के ढेर की तरफ इशारा करते हुए तारिक को उसी तरफ धकेला और इशारा किया कि ढेर में छुप जाए। तारिक को भूसे के ढेर में छुपने में चंद सेकंड से ज्यादा ना लगे होंगे, लेकिन उसने इतना सा खला रहने दिया कि हवा की आमदोरफ्त बाकी रहे और वो बाहर की इत्तला भी रख सके। जीप मकान के सामने आके रुक गई। उस पर तीन फौजी सवार थे, वो तीनों सब मशीनों से लैस थे। जीप रुकते ही दो फौजी कूद कर नीचे उतर आए, जबकि तीसरा फौजी स्टीयरिंग के सामने बैठा रहा। इसी बस्ती के तमाम मर्द कहाँ हैं? कहाँ छुप गए हैं सब लोग, मुझे बताओ, एक फौजी ने गरजदार आवाज में पूछा। क्या हम तुम्हें मर्द नजर नहीं आते? एक बूढ़े ने जवाब दिया। खामोश रहो बुढ़े, फौजी धाड़ा, मैं जवान आदमियों के बारे में पूछता हूँ, हम जवानों से ज्यादा ताकतवर हैं, इन बाजुओं में बड़ी कुव्वत है। अभी बूढ़े आदमी ने सीना ठोक कर जवाब दिया। बंद करो अपनी जबान को, फौजी ने कहते हुए सब मशीन का बट पूरी ताकत से बूढ़े के सीने पर मारा। बूढ़ा चीखता हुआ गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फौजी ने उसे तीन चार और ठोकरें दी ताकि वो उठ ही ना सके। बूढ़ा बुरी तरह बिलबिलाने लगा। हमें मालूम है कि यहाँ कोई पाकिस्तानी जासूस छुपा है, उस फौजी ने सबके चेहरों को घूरते हुए कहा। बेहतर होगा कि इस जासूस को हमारे हवाले कर दो, वरना हम बस्ती को आग जलाकर राख कर डालेंगे और तुम में से कोई भी ना जिंदा बच सकेगा। यहाँ कोई जासूस नहीं, अगर होता तो हम उसके बारे में कुछ न कुछ जानते और जरूर तुम्हें बताते थे, एक उधेड़ उम्र औरत ने दलेरी से जवाब दिया। ओह, दूसरा फौजी उसकी तरफ घूम गया। उसने सब मशीन गन की नाल पूरी ताकत से औरत के मुंह पर मारी। औरत के मुंह से चीख निकली, उसका जबड़ा टूट गया था, खून उबलने लगा था। राधन, फौजी ने अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहा, तमाम घरों की फौरन तलाशी लो, अगर कोई मजाहमत करने की कोशिश करे तो उसे फौरन भून डालो। जीप के स्टेयरिंग के सामने बैठा हुआ फौजी भी उतर आया, वो राधन था। राधन के साथ मिलकर घरों की तलाशी शुरू की गई। तीसरा फौजी बस्ती के मकीनों पर सब मशीन गन ताने खड़ा रहा ताकि कोई अपनी जगह से हिल ही न सके। रोशा अपनी जगह से सिरकती हुई चूल्हे के करीब आकर खड़ी हुई। मवेशियों वाले कमरे के दरवाजे के सामने फौजी जाकर खड़े हुए। भूसे का वो ढेर भी नजर आ रहा था जिसमें तारिक छुपा हुआ था। एक फौजी जैसे ही उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, रोशा जमीन पर पड़ी हुई तीन चार लकड़ियां उठाकर उस तरफ सामने आ गई, जैसे लकड़ियां उस कमरे में डालने जाती हो। फौजी ने उसे देखा तो एकदम खिटक गया, जैसे पहली बार उसे देखा हो। ओहो, फौजी के मुंह से सीटी ही निकली। रमेश जी, इधर तो देखो जरा, क्या चीज है ये, इसी को ले चलो, रात आराम से गुजर जाएगी। वाकई, उस फौजी ने जवाब दिया जिसे रमेश कहकर मुखातिब किया गया था। इस लड़की को तो मैंने देखा ही न था, उठाकर जीप में डाल लो और ले चलो यहाँ से, लानत भेजो पाकिस्तानी जासूस पर। जिस फौजी ने अपने साथियों को रोशा की तरफ मुतवज्जो किया था वो राधन था। वो नपे तुले कदमों के साथ रोशा की तरफ बढ़ा। खबरदार, अपने नापाक हाथ मुझे मत लगाना। रोशा लकड़ियां फेंक कर दो कदम पीछे हटी। अरे तुम बचकर कहाँ जाओगी लड़की, कई रोज बाद तो तुम जैसी कोई कोमल नारी दिखाई दी है, आज तो हम अपने मन की प्यास भी बुझाएंगे और मजे भी लूटेंगे, राधन आगे बढ़ते हुए बोला। रोशा पीछे हटते हुए दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। राधन ने अचानक ही लपक कर उसे एक हाथ से पकड़ लिया। राधन के दूसरे हाथ में सब मशीन गन थी। रोशा चीखते हुए अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इस खेचातानी में रोशा की ओढ़नी उसके जिस्म से गिर गई। कमीज में उसके सीने की उठान देखकर राधन की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। उसने रोशा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रोशा के मुंह से एक और चीख निकली। तारिक सईद भूसे के ढेर में छुपा ये आवाजें सुन रहा था। रोशा की चीखों में अब राधन के कहके भी शामिल थे। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेला जा रहा हो। अब दूसरे फौजी भी कहके मारते हुए करीब आए। तारिक की कुव्वतें बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी थी। वो भूसे के ढेर से निकल आया और फिर जो मंजर दिखाई दिया वो उसका दिमाग घुमा देने के लिए ही काफी था। रोशा की कमीज जगह जगह से फट चुकी थी। राधन बचा कुचा लिबास भी उसके जिस्म से नोचने की कोशिश कर रहा था। उसकी सब मशीन गन दरवाजे से चंद फुट के फासले पर चूल्हे के करीब पड़ी थी। दूसरे फौजी बस्ती वालों पर गन ताने खड़े थे। बस्ती वालों के चेहरे धुंध में लिपटे हुए महसूस होते थे। खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत से उनके जिस्म थर-थर कांप रहे थे, लेकिन वो रोशा की मदद करने से कासिर थे। मौत उन पर पहरा दे रही थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक बूढ़े ने अपनी जगह से हरकत की। उसकी बूढ़ी रगों में जैसे गैरत का लावा उबल आया। छोड़ दो इसे कुत्तो, छोड़ो, बूढ़ा चीखता हुआ रोशा को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक फौजी की सब मशीन गन धाड़ उठी। बूढ़े के जिस्म से खून की कई धारे बह निकली। उसका जिस्म छलनी हुआ और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तारिक एक ही जस्ट में कमरे से बाहर निकल आया। वो ठीक उसी जगह पर गिरा था जहां राधन की सब मशीन पड़ी थी। उसने गिरते ही सब मशीन उठाकर हाथ में ली। ब्लेयर ने उसे कमरे से छलांग लगाकर जमीन पर गिरते हुए देख लिया था। उसने चीख कर अपने साथियों को खबरदार किया और साथ ही घूमकर फायर भी शुरू किया। तारिक बड़ी फुर्ती से लौट लगाकर एक तरफ को हट गया। गोलियां उसके आसपास गिरी, लेकिन उसने भी लेटते लेटते सब मशीन का फायर खोल दिया। सबसे पहले ब्लेयर, उसके बाद रमेश की चीखें फिजा में गूंज उठी। उसके जिस्म को छलनी करने के बाद वो फारिग हुआ। छोड़ दो लड़की को और दूर हटकर खड़े हो जाओ, तारिक धाड़ा। उसकी गन का रुख अब राधन की तरफ ही था, जो रोशा को दबोचे मभूत सा खड़ा था। उसका चेहरा खौफ से एकदम जर्द हुआ। रोशा ने खुद ही अपने आप को एक झटके से राधन की गिरफ्त से छुड़ाया और दौड़ती हुई उन औरतों के करीब जाकर खड़ी हो गई जो अब भी खौफ से कांप रही थी। एक बूढ़ी औरत ने अपनी बोसीदा सी शाल रोशा के जिस्म पर डाल दी। अपने साथियों की लाशें उठाकर जीप में डालो। राधन ने देखा कि तारिक ने चिंघाड़ते हुए हुक्म दिया। राधन ने बेचू चरा उसके हुक्म की तामील करते हुए दोनों लाशें उठाई, जीप के पिछले हिस्से में डाल दी। खौफ की शिद्दत से उसके हाथ कांपते थे और टांगे लरसती थी। बस्ती के लोगों ने उन भारतीय दरिंदों के हाथों शहीद होने वाले बूढ़े की लाश उठाकर एक चारपाई पर डाल दी थी। इस दौरान चरागाह की तरफ से मवेशियों का रेवड़ आता हुआ दिखाई दिया। शिराज बाबा तेज तेज कदम उठाते हुए मवेशियों के आगे आगे चल रहे थे। जब वो करीब पहुंचे तो ये सूरत हाल देख कर उसका चेहरा धुआं धुआं हुआ। रोशा दौड़कर उससे लिपट गई और रो रो कर उसे पूरी दास्तान सुनाने लगी। तुमने मेरी इज्जत बचाई तारिक बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बात के लिए, लेकिन शिराज बाबा एक लम्हे को खामोश हुए, फिर बात जारी रखते हुए बोले, फायरिंग की आवाज इन पहाड़ों में दूर दूर तक सुनी जा सकती है। सूरतेहाल मालूम करने या अपने साथियों की तलाश में भारतीय फौजी जल्द या बदेर इस तरफ जरूर आ जाएंगे। उनके बारे में तुमने क्या सोच रखा है, कुछ सोचा है उनके बारे में? उसने राधन और जीप में पड़ी हुई लाशों की तरफ देखा। इनकी फिक्र बिल्कुल मत करें बाबा, इन्हें मैं ठिकाने लगा दूंगा, तुम इसकी तदफीन का बंदोबस्त शुरू करो, तारिक ने कहा और राइफल के इशारे से राधन को जीप में बैठने का इशारा कर दिया। राधन स्टेयरिंग के सामने बैठा था और तारिक पिछली सीट पर। सब मशीन गन की नाल उसने राधन की पुश्त पर लगा रखी थी। राधन पहाड़ों में उसके बताए हुए रास्ते पर हल्की रफ्तार से जीप चला रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद तारिक ने जीप रुकवा ली। जिस जगह जीप रोकी गई उससे चंद गज आगे सैकड़ों फुट गहरा खड्ड था। कल बस्ती की तरफ आते हुए तारिक ने ये जगह देख ली थी। उसके ख्याल में इन भारतीय सुरमाओं और जीप को ठिकाने लगाने के लिए इससे बेहतर जगह कोई भी न हो सकती थी। तुम करना क्या चाहते हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राधन ने फौरन ही सवाल किया। उसकी आवाज कपकपा रही थी। तुमने अपने साथियों से कहा था ना कि आज की रात आराम से गुजरेगी। तारिक ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ करने वाला हूँ इससे तुम तो क्या, तुम्हारी आत्मा भी हमेशा सुखी रहेगी। इंजन बंद कर दो। राधन ने इंजन बंद किया। वो घूम कर पीछे देखना ही चाहता था कि तारिक ने सब मशीन गन का बट पूरी ताकत से उसकी खोपड़ी पर रसीद किया। राधन चीखता हुआ सीट पर ढेर हो गया। तारिक ने उसे खींचकर एक तरफ हटाया और खुद स्टेयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और उसे गियर में डालकर जीप को हरकत में ले आया। जीप आहिस्ता आहिस्ता खड्ड की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही किनारे पर पहुंची, तारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जीप से छलांग लगा दी। जीप दूसरे ही लम्हे निगाहों से ओझल हो चुकी थी। चंद सेकंड बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। तारिक ने हाथ झटके जैसे हाथ से गर्द झाड़ दी हो, फिर तेज तेज कदम उठाता बस्ती की तरफ को रवाना हुआ। अंधेरा फैल चुका था, रास्ता खासा दुश्वार गुजार था, मगर तारिक को बस्ती तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश न आई। सब लोग शिराज बाबा के घर में जमा थे। शहीद होने वाले बूढ़े को दफन किया जा चुका था, लेकिन इस दौरान यहाँ एक फर्द का और इजाफा हो चुका था। वो चेहरा तारिक के लिए अजनबी बिल्कुल न था। वो सलीम कश्मीरी था जिसके साथ उसने तरबियती कैंप में ट्रेनिंग हासिल की थी। उन दोनों ने बड़ी गर्म जोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। मैं अभी चंद मिनट पहले ही पहुंचा हूं। यहां आते ही पता चला कि सूरत हाल काफी संगीन है, सलीम कश्मीरी ने बताया। मैं तो कल शाम ही को पहुंच जाता, मगर एक रात अखनौर में रुकना पड़ा। वहां दरिया के करीब भारतीय फौजी और मुजाहिदीन में एक बहुत बड़ी झड़प हुई। मैं भी भारतीय फौजियों के खिलाफ इस कार्रवाई में मुजाहिदीन के साथ ही शरीक था। इस झड़प में हमारे 15 मुजाहिदीन शहीद हुए, जबकि मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों के एक काफले पर हमला करके तकरीबन 40 फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। मैं वहां से निकल पड़ा, मगर मेरा मेजबान जख्मी हुआ इसलिए मुझे वहां पर रुकना पड़ा। यहां की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। आज दिन में यहां से तकरीबन 2 कोस दूर एक बस्ती को जलाकर राख कर दिया गया। बस्ती के तमाम अफराद को या तो जिंदा जला दिया गया या उन्हें गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया गया। सिर्फ एक औरत जिंदा बची है जो अब शिराज बाबा की भी मेहमान है, तारिक ने बताया। भारतीय शायद समझते हैं कि इस तरह वो हमें दबा लेंगे या वादी से निकलने पर मजबूर कर देंगे। उन्हें हमारे शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा, याद रखें वो, सलीम कश्मीरी ने जज्बाती अंदाज में कहा। और हम ये हिसाब जरूर लेकर रहेंगे, एक बूढ़े ने फौरन ही जवाब दिया। इंशाल्लाह, सब ने बयाक वक्त कहा। कुछ देर बाद बस्ती के लोग एक एक करके अपने घरों को रुखसत हुए। मासी जैनब को रोशा अपने कमरे में ले गई। उसकी आंखों से आंसू न थमते थे। उसकी बस्ती के सब लोग मार दिए गए थे, घरों को जलाकर राख कर दिया गया था और खूनी भेड़िए उसकी बेटी को उठाकर ले गए थे। ये कोई ऐसा गम न था जिसे आसानी से बर्दाश्त कर लिया जाता। और फिर उसके चंद ही घंटों बाद उस बस्ती पर भी आफत नाजिल होते होते रह गई जहां उसने पनाह ले रखी थी। तारिक अगर बरवक्त कार्रवाई न करता तो ये छोटी सी बस्ती भी वीराने में तब्दील हो चुकी होती। इस कमरे में अब शिराज बाबा, तारिक और सलीम कश्मीरी रह गए थे। उनके सामने कहवे की प्यालियां रखी थी और वो हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए दबे दबे लहजे में बातें करते थे। शिराज बाबा कह रहे थे, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को इत्तला मिल चुकी है कि हमारी तरफ से कोई खुफिया मिशन भेजा जा रहा है। वो समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी जासूस घुस आए हैं। इन जासूसों की तलाश में वो वादी में हम मुसलमानों की बस्तियों को जलाकर राख कर रहे हैं। हमारी जानोमाल और इज्जत व आबरू यहाँ ना तो पहले महफूज थी और ना अब है। ये भारतीय दरिंदे मुख्तलिफ हीले बहानों से हमें जुल्म व तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारा ये अहद है कि हम खून आशाम भेड़ियों को वादी से निकाल कर ही दम लेंगे। जब तक इस सरजमीन को उनके नापाक वजूद से खाली नहीं करवा लेंगे, हम उस वक्त तक चैन से बिल्कुल नहीं बैठेंगे। शिराज बाबा चंद लम्हों को खामोश हुए, फिर बात जारी रखते हुए दोबारा बोले, लिबरेशन फ्रंट ने तुम दोनों को एक अहम मिशन के लिए मुंतखब किया है। सलीम ने यहाँ पहुँचने में एक दिन की ताखीर कर दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास अब भी वक्त मौजूद है। भारतीय भेड़िए चौकस हो गए हैं, वो तुम लोगों की तलाश में मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ रहे हैं। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, इस पर वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। उन्हें कल पता तो चल जाएगा कि उनके तीन आदमियों को कत्ल कर दिया गया है। वो अपने आदमियों का इंतकाम लेने के लिए वादी में मुसलमानों के खून से होली खेलेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी उनके हत्थे चढ़ जाए, इसलिए मेरे ख्याल में तुम लोगों को सुबह की रोशनी फैलने से पहले पहले यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। ठीक है, हम सुबह 4 बजे के करीब यहाँ से रवाना हो जाएंगे, लेकिन हमें इस मिशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, तारिक ने सवाल किया। मिशन के बारे में तफसीलात तुम्हें दिल्ली पहुंचकर बताई जाएंगी, शिराज ने कहा। दिल्ली पहुंचते ही तुम सब्जी मंडी में बाबू महफूज से राब्ता कायम करो, वो फलों का आड़ती है। इस मिशन के बारे में तमाम तफसीलात तुम्हें वही बताएगा। ठीक है, हम आज सुबह रोशनी फैलते ही यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, रोशा का बाप, मेरा मतलब है आपका बेटा, कहाँ पर है? क्या वो भी लिबरेशन फ्रंट में है? तारिक ने सवाल किया। रोशा 6 साल की थी जब उसका बाप भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गया। वो आज तक इस हकीकत से बेखबर है। वो यही समझती है कि उसका बाप किसी महाज पर दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है। मेरे 3 बेटे इस तहरीक आजादी में शहीद हो चुके। काश मेरा कोई और बेटा भी होता जिसे मैं वतन की आबरू पर कुर्बान कर सकता, शिराज बाबा आपदीदा होकर बोले। कमरे की फिजा एक बार फिर उदास हुई। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। शिराज बाबा बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए उठ गए। ठीक है, अब तुम लोग कुछ आराम कर लो, मैं सुबह 4 बजे तुम लोगों को जगा दूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है, सलीम ने जवाब दिया। शिराज बाबा कमरे से निकल गए। सलीम और तारिक सरगोशियों में बातें करने लगे और फिर अचानक ही तारिक और खामोश फिजा जबरदस्त फायरिंग से गूंज उठी। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। फायरिंग की आवाजें खासी दूर जुनूब की तरफ से आ रही थी। यूं लगता था जैसे दो मुतहरिब पार्टियां आपस में टकरा गई हों। उन्हें समझने में देर न लगी कि भारतीय फौज और मुजाहिदीन के किसी ग्रुप में कोई तसादुम हो गया है। ये कोई गैर मामूली बात तो थी नहीं। भारतीय फौज और मुजाहिदीन में झड़पें रोज का मामूल बन चुकी थी। बारूद ने फिजा को मसमूम कर रखा था। फायरिंग की आवाज तकरीबन आधे घंटे तक सुनाई देती रही और फिर पहले जैसी खामोशी ही छा गई। वो दोनों कमरे में आ गए। इस किस्म की सूरत हाल में नींद का तो सवाल ही पैदा न होता था। वो बैठे सरगोशियों में बातें करते रहे और रात धीरे धीरे बीतती रही। ठीक 4 बजे शिराज बाबा कमरे में दाखिल हुए। तारिक ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, अभी अंधेरा फैला हुआ था। रोशा नाश्ता बना रही थी। तुम लोग तैयार हो जाओ, जल्दी करो, शिराज बाबा ने कहा, हम तैयार हैं बाबा। सलीम ने जवाब दिया, ये तुम दोनों अपने गले में पहन लो। शिराज बाबा ने कहा, ये गंडे की तरह बटे हुए धागे थे, पीले रंग के धागे, और इस पीले धागे में चंद जगहों पर सब्ज धागे से कुछ गिरहें पड़ी हुई थी। ये धागे गुम न होने पाए, ये बाबू महफूज के लिए तुम्हारी शनाख्त का जरिया होंगे। धागे न होने की सूरत में वो तुम्हें शनाख्त नहीं कर सकेगा। शिराज बाबा ने कहा, ठीक है, हम इन्हें अपने गले में पहने रहेंगे। तारिक ने जवाब दिया और उन दोनों ने धागों वाले हार नुमा चीज को अपने गले में पहन लिया। चंद मिनट बाद रोशा उनके लिए नाश्ता लेकर आ गई, जो कहवे और सूखी रोटी पर मुश्तमिल था। उन्होंने नाश्ता किया और रवानगी के लिए तैयार खड़े हुए। वो रोशा और शिराज बाबा एक साथ ही कमरे से बाहर निकले। खामोश फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। इस मर्तबा ये आवाजें मशरिक की तरफ से आई थी। उन दोनों ने रोशा और शिराज बाबा को खुदाफिज कहा और दरख्तों के झुंड की तरफ चलने लगे। वो दोनों सुबह 7 बजे जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। पठानकोट और लुधियाना से होकर दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेन 8 बजे रवाना होती थी। ट्रेन की रवानगी में अगरचे अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन स्टेशन पर बेपनाह हुजूम था। मुसाफिरों में ज्यादातर तादाद हिंदुओं की थी, सिख और मुसलमान भी शामिल थे। स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत ज्यादा सख्त थे। लातादाद फौजी राइफलें संभाले प्लेटफार्म पर इधर से उधर घूमते नजर आते थे। सिख और मुसलमान मुसाफिरों पर खासी अच्छी तरह से निगाह रखे हुए थे। तारिक और सलीम फटे पुराने लिबास में मलबूस थे। तारिक के ख्याल में बराह रास्त दिल्ली जाना मुनासिब बिल्कुल न था, क्योंकि इन दिनों दिल्ली जाने वाले कश्मीरियों को शक व शुबे की निगाह से देखा जाता था। इसलिए उन्होंने पठानकोट के टिकट खरीद लिए। पठानकोट में चंद घंटे रुकने के बाद वो लुधियाना के बजाय अमृतसर जाने वाली बस पर बैठ गए। यही उनकी गलती थी। पूरे मशरकी पंजाब में उन दिनों आजाद रियासत खालिस्तान के कयाम के सिलसिले में सिखों की तहरीक उरूज पर थी। अमृतसर उस तहरीक का मरकज था। यहाँ सिखों और भारतीय फौज में बाकायदा महाज खुला हुआ था। ये दोनों जब अमृतसर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। शहर के एक इलाके में जबरदस्त लड़ाई जारी थी। दूसरे इलाके भी बतदरीज इस लड़ाई की लपेट में आते चले जा रहे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था, बाजार बंद हो चुके थे, इक्का दुक्का रेस्टोरेंट खुले हुए थे, लेकिन वहां भी उल्लू बोल रहे थे। सलीम और तारिक शदीद उलझन का शिकार थे। उनके लिए पनाह की कोई जगह भी ना थी। इस तरह सड़कों पर फिरना भी खतरे से खाली बिल्कुल ना था। वो एक गली में मुड़े ही थे कि सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। उसके दौड़ने की रफ्तार यकसा नहीं थी। कभी वो लड़खड़ा कर लहराने लगता और कभी झुक कर दोहरा हो जाता। सलीम और तारिक एक मकान की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए। गली में उन दोनों और सामने से आते हुए उस आदमी के सिवा कोई भी न था। वो आदमी उनके करीब पहुंचा तो लड़खड़ा कर गिर गया। उसने उठने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। सलीम और तारिक ने मानीखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेजी से जमीन पर गिरे हुए उस आदमी के करीब पहुंच गए। वो एक नौजवान सिख था। उसकी उम्र 18-19 के लगभग होगी। वो जख्मी था, पिंडली और कंधे से खून बह रहा था। उन दोनों ने झुककर सिख को उठा लिया। सिख नौजवान की आंखों में खौफ नुमाया था। डरो नहीं, हमें अपना दोस्त ही समझो। कैसे जख्मी हुए? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तारिक ने हमदर्दाना लहजे में कहा। तुम लोग कौन हो? सिख नौजवान ने अजीब सी निगाहों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। मुसलमान हो लेकिन यहाँ के रहने वाले तो नहीं लगते। क्या हम अजनबी लगते हैं तुम्हें? बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तारिक बोला, मैं अब चल फिर नहीं सकता। मुझे मेरे घर पहुंचा दो तो मेहरबानी होगी। तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं तरन तारन का रहने वाला हूँ। आज सुबह ही यहाँ पहुंचा था। दरबार साहब गया था कि हिंदू फौजियों ने दरबार साहब पर हल्ला बोल दिया। हमारे बहुत से आदमी वहां पर मारे गए। हिंदुओं ने दरबार साहब के एक हिस्से को भी आग लगा दी। मैं अपने चंद साथियों के हमराह बड़ी मुश्किल से दरबार साहब से जान बचाकर निकला। भागते हुए मुझे 2 गोलियां भी लगी। गुरु नानक स्ट्रीट पर मेरे एक दोस्त का घर है, मुझे वहां पर पहुंचा दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। गुरु नानक स्ट्रीट कहां पर है? अगर तुम रास्ता बता दो तो हम तुम्हें वहां पर पहुंचा सकते हैं, तारिक ने कह दिया। मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा, सिख नौजवान ने जवाब दिया। तारिक ने सिख नौजवान को कंधे पर उठा लिया और वो दोनों तेज तेज कदम उठाकर चलने लगे। जख्मी सिख नौजवान उन्हें रास्ता बताता चला जा रहा था। شہر میں چاروں طرف سے گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ مختلف تنگ و تاریک اور پیچ در پیچ گلیوں سے ہوتے ہوئے گرو نانک اسٹریٹ پہنچ گئے۔ یہاں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا، تمام مکانات کے دروازے بند تھے، یہاں اسٹریٹ لائٹ بھی نہ تھی اور گھروں کے سامنے بھی بتیاں بجھی ہوئی تھی۔ وہ محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے تاریکی میں چل رہے تھے اور آخر کار سکھ نوجوان کے کہنے پر ایک مکان کے دروازے پر رک گئے۔ سلیم نے دروازے پر دستک دی۔ کئی مرتبہ دستک کے بعد اندر سے ایک خوفزدہ سی آواز سنائی دی۔ کسی بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں دریافت کیا تھا کہ باہر کون ہے۔ چاچا دروازہ کھولو، میں ہوں گوربخش سنگھ، کرتار سنگھ کا دوست، ترن تارن والا۔ میں زخمی ہوں چاچا، دروازہ کھولو، سکھ نوجوان نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھل گیا، ایک بدحواس سا بوڑھا باہر نکلا۔ اس کی عمر 60-70 کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ طارق اور سلیم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ بدحواس سا ہو کر بولا۔ یہ میرے محسن ہے چاچا، یہی مجھے یہاں بچا کر لائے ہیں، ہمیں اندر آنے دو چاچا، زخمی گوربخش سنگھ نے کہا۔ اسی لمحے کہیں قریب ہی شور اور فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اندر آ جاؤ، جلدی کرو۔ بوڑھا راستے سے ہٹ گیا۔ طارق اور سلیم اندر آ گئے۔ بوڑھے نے جلدی سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ یہ ایک تنگ سی ڈیوڑی تھی۔ بوڑھا انہیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں دو چرپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ طارق نے زخمی گوربخش کو ایک چرپائی پر لیٹا دیا۔ خون سے اس کا لباس تر ہو رہا تھا، خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر زردی پھیل چکی تھی اور نکاہت غالب آ رہی تھی۔ اسے دو گولیاں لگی ہیں، طارق نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ہسپتال جانے سے بھی انکار کر دیا۔ کیا کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کا انتظام ہو سکتا ہے؟ خون کافی بہہ چکا ہے، اگر اس کا جسم اسی طرح گولیوں کے ساتھ ہی رہا تو اس کی زندگی کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر، بوڑھا جیسے سوچ میں پڑ گیا، ہمارے ساتھ والے مکان میں ایک لیڈی ڈاکٹر رہتی ہے، ممکن ہے وہ ترس کھا کر اس کا علاج کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم اس شہر میں اجنبی ہیں سردار جی، آج شام پٹھانکوٹ سے یہاں پہنچے ہیں، یہاں تمام ہوٹل بھی بند ہے، ہمارا تو کوئی یہاں جاننے والا بھی نہیں جس کے ہاں رات گزار سکے۔ طارق نے اپنے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا جو گوربخش کے خون سے بالکل داغدار ہو چکا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم دونوں کشمیری مسلمان ہونا۔ بوڑھے سکھ نے باری باری ان دونوں کے چہروں کی طرف غور سے دیکھا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے سردار جی، طارق نے جواب دیا۔ دونوں قومیں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، سردار جی نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے 1947 میں ایک غلطی کی تھی جس کا خمیازہ اب بھی بھگتتے ہیں۔ 47 میں تقسیم ہند کے وقت اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ ہندو انسان نہیں، ایک ایسا بھیڑیا ہے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اس نے انسانیت کو جس طرح کچلا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ اسی ظالم قوم نے مذہبی روایات کو بھی پامال کر کے رکھ دیا ہے، آج انہوں نے دربار صاحب کو بھی آگ لگا دی، بیسیوں بے گناہوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا، کشمیر میں ہستی بستی آبادیوں کو راکھ کر کے رکھ دیا، انسانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ ہمارا اور کشمیری مسلمانوں کا جرم صرف یہ ہے کہ ہم ان بنیوں کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، ان سے اپنی آزاد فضا میں سانس لینے کا حق بھی مانگ رہے ہیں، لیکن غاصب برہمن طاقت کے بلبوتے پر ہمیں دبانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ سیاہ رات ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ تاریکی ضرور چھٹے گی اور روشن صبح ضرور طلوع ہوگی انشاءاللہ، سلیم بولا۔ یہ باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی سردار جی، طارق نے کہا، پہلے ڈاکٹر صاحب کو بلوا لیجئے، گوربخش کی حالت کچھ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اوہ، بوڑھا سردار جیسے چونک کر رہ گیا۔ اسی لمحے گلی میں شور اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اکا دکا فائر بھی ہو رہے تھے۔ آج ہندوؤں نے جو آگ لگائی ہے وہ پورے شہر میں پھیل رہی ہے، صرف امرتسر ہی نہیں پورا ہندوستان اس آگ میں جلے گا، میں لیڈی ڈاکٹر کو بلوا کر لاتا ہوں، گلی سے باہر جانا خطرے سے خالی نہ ہوگا، میں کوٹھے پر سے ہو کر جاتا ہوں، تم لوگ اس کا خیال رکھنا، میں دیکھتا ہوں۔ بوڑھا سردار کمرے سے نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سردار جی ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ عورت کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا، اس کا بیگ سردار جی نے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا جسے اس نے کرسی پر دوبارہ رکھا۔ لیڈی ڈاکٹر جھک کر گوربخش کے زخموں کا جائزہ لینے لگی۔ گرم پانی کی ضرورت پڑے گی، لیڈی ڈاکٹر نے कहा। सरदार जी ने दरवाजे के करीब पहुंचकर हाँक लगाई, काके दी माँ पानी गर्म करके ले आ, जल्दी कर जल्दी कर। सरदार जी आप जानते हैं कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, इस किस्म का ऑपरेशन मैंने कभी नहीं किया, लेकिन बहरहाल आप तो बड़ी अच्छी सर्जन है ना जी। हमारे काके की पैदाइश पर आपने काके की माँ का पेट चीरा था तो उसे जरा से भी तकलीफ ना हुई थी, सरदार जी ने मासूमियत से कहा। सरदार जी आप पानी गर्म करके ले आइए, बाकी काम मेरा है, तारिक ने हंसी जब्त करते हुए फौरन ही कहा। सरदार जी काके की माँ को पुकारते हुए कमरे से बाहर निकले और खुद भी मुस्कुराने लगे। गोरबख्श सिंह को एक गोली दाएं कंधे पर और दूसरी पिंडली में लगी थी। इसकी कमीज उतार दें और पतलून का पांचा और ऊपर चढ़ा दें, लेडी डॉक्टर ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा। तारिक ने गोरबख्श की कमीज उतार दी, पतलून का पांचा ऊपर चढ़ाने के लिए उसे सिलाई उधेड़नी पड़ी। इस दौरान सरदार जी गर्म पानी करके ले आए। लेडी डॉक्टर झुककर पहले पिंडली का जख्म साफ करने लगी। गोरबख्श होश में था, एनेस्थीसिया दस्तयाब न था और जाहिर है ये ऑपरेशन उसके होश में होते हुए किया जाना था, कुछ तो करना था ही ना। इसके साथ ही पार्ट नंबर 1 खत्म हुआ। मजीद वाकयात के लिए पार्ट नंबर 2 सुनिए।